मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 16 अक्टूबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं बिल्कुल ही एक नए विषय पर बात करने जा रहा हूं और सच पूछिए तो नए अंदाज में भी बात करने जा रहा हूं, यानी कि दोनों ही बातें नई हैं। विषय है इत्तफाक, जिसे आप इंग्लिश में कोइंसिडेंस कहते हैं, और अंदाज इस मायने में नया है कि मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, मेरे साथ कोई इत्तफाक घटित हुआ हो उसके बारे में भी मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं एक व्यक्ति हैं, नाम सुना होगा आपने, गोपाल गांधी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने इस पर जो कुछ भी लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, मैं केवल उनके लिखे हुए का वाचन आप सबके सामने कर रहा हूं। दोस्तों गोपाल गांधी जी का नाम शायद आपने इससे पहले भी सुना हो, मैंने भी कई बार उनका नाम लिया है। ये गांधी जी के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके नाती हैं, IAS ऑफिसर रहे, तमिलनाडु कैडर के बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रहे। बेसिकली ये एकेडमिक नेचर के व्यक्ति हैं। हमारे वेंकट रमन जी जब उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति थे तब ये उनके सचिव रहे, बाद में दक्षिण अफ्रीका में जब हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई तो ये पहले हाई कमिश्नर बनाए गए, इसके बाद पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल भी रहे। और इन्होंने IAS से तब त्यागपत्र दे दिया था, किस लिए मालूम है, कि एक सरदार पटेल स्कूल है दिल्ली में कि वहां मुझे पढ़ाना है, वहां का प्रिंसिपल बनना है। लेकिन उसी समय फिर कुछ ऐसी घटना घटी, दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ आप गांधी जी के रिश्ते को जानते हैं, तो यह समझा गया कि अगर गोपाल गांधी जी को वहां का हाई कमिश्नर बनाकर भेजा जाए तो यह बहुत अच्छा होगा और वहां उन्हें भेजा गया। बहुत ही एकेडमिक व्यक्ति, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही सीधे साधे और परले दर्जे के ईमानदार व्यक्ति, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि इनकी प्रतिष्ठा इसी रूप में ही है। और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे कई बार इनसे मिलने का अवसर मिला है। तो मैं उन्होंने इत्तफाक पर जो लिखा है उसके अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं और ज्यों का त्यों ही पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आप इस अंश का रसास्वादन कर सके। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। अभी अखबारों में कुछ दिनों पहले ही ये लेख उनका छपा था। तो मैं मित्रों आइए अब बिना समय लिए हुए उनके अंशों को पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि लिखा है, इस बात को 20 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया जब मुझे संयोग या इत्तफाक से जुड़ा गजब अनुभव हुआ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने ब्रिटिश रेडियो व टेलीविजन पर वॉइस एक्टर रूथ रोसेन को सुना था। वॉइस एक्टर का मतलब है जो आवाज से ही अभिनय करते हैं, है ना। वॉइस एक्टर रूथ रोसेन को सुना था जो मैरी पोलक की किताब मिस्टर गांधी द मैन के कुछ अंश पढ़कर सुना रही थी। उनका बोलने का लहजा इतना शानदार था और कहना होगा कि उन्होंने अपनी वाणी के जरिए एक तरह से लेखक को जीवंत कर दिया था, बल्कि कहें कि उन्होंने एक जीवनी को नाटक में तब्दील कर दिया था। तकरीबन 3 साल बाद एक दिन मैंने उसी किताब को फिर से पढ़ने के लिए उठाया। मैं उस किताब का एक तिहाई हिस्सा भी नहीं पढ़ पाया था कि तभी मेरी फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया, उधर से आवाज आई, गोपाल मैं रूथ बोल रही हूं, रूथ रोसेन। मैं सन्न रह गया। लंबे समय से मेरी रूथ से कोई बात नहीं हुई थी। रूथ मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप भी मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, मैं इस वक्त मैरी पोलक की किताब ही पढ़ रहा था। क्या मुझे यकीन नहीं होता, वाकई ये तो गजब हो गया। रूथ मैं इस किताब के कुछ पन्ने आपको फोन पर पढ़कर सुना भी सकता हूं ताकि आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए। निसंदेह मुझे आप पर यकीन है गोपाल, लेकिन असल बात तो यह है कि अब हैरान होने की बारी आपकी है। मैंने आपको इसलिए फोन किया गोपाल, मैं कैसे कहूं, दरअसल मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि क्या आप किसी ऐसे पब्लिशर का नाम सुझा सकते हैं जो मेरे पति की पांडुलिपि को प्रकाशित कर सके। मैं देखता हूं गोपाल, यह किताब जिस बारे में है, जो इसका विषय है, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस किताब का विषय है इत्तफाक। यह सुनकर मैं निस्तब्ध हो गया। दोस्तों, ये पहली घटना है। अब आप देखिए कि कैसे इवेंट्स जुड़ते चले गए हैं, लेकिन आप इसका रसास्वादन तब कर पाएंगे जब बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे, तब आपको इसका मजा आएगा। और सच पूछे तो आप अपने बारे में भी कुछ ऐसे इत्तफाक याद कर सकेंगे जो आपको रोमांचित कर जाएंगे। दोस्तों, इसी लेख में इन्होंने एक दूसरी घटना का भी उल्लेख किया है, और मुझे लगता है कि जो दूसरी घटना है ये पहले से भी ज्यादा चमत्कृत करने वाली है। देखिए अब वो क्या लिखते हैं। इसी तरह एक दो महीने पहले मुझे इत्तफाक का एक और अनुभव हुआ, यह भी एक किताब से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी बेटी के घर में किताबों के एक शानदार कलेक्शन के सामने अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। किसी ने मुझे आशीष नंदी का कारवां में प्रकाशित साक्षात्कार मेल किया था, जिसमें उन्होंने 1995 से लेकर अब तक 3,00,000 किसानों की खुदकुशी का जिक्र किया था। इस मेल को पढ़ने के लिए मैंने अपना इनबॉक्स खोला था। तभी मुझे पी साईनाथ का ख्याल आया, जिन्होंने किसानों के कर्ज जाल में उलझने के पैटर्न के बारे में दुनिया को अवगत कराया था। इसके साथ ही मुझे प्रेमचंद की गोदान और उसके मुख्य पात्र होरी महतो और उसकी पत्नी धनिया भी याद आए, जिन्हें सूदखोर महाजन के कर्ज में उलझने की वजह से विपत्तियां झेलनी पड़ती थीं। अगले ही पल मेरी किताबों की अलमारी में रखी मार्क्स लिखित कैपिटल के तीसरे भाग पर नजर पड़ी। मैंने इस किताब को उठाया और इत्तफाकन मैंने उसका जो पन्ना खोला उसमें मार्क्स द्वारा भारतीय किसानों के बारे में दिया गया विवरण दर्ज था, जिसमें लिखा था, एक छोटे किसान के लिए उसकी एक गाय की मौत भी उसे दीनहीन बना देती है। इसके बाद वह सूदखोरों के चंगुल में फंस जाता है, और एक बार वह उनके चंगुल में फंस जाए तो फिर कभी मुक्त नहीं हो पाता। मैं इस इत्तफाक पर चमत्कृत था, लेकिन बात अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं सोचने लगा कि क्या प्रेमचंद भी मार्क्स से प्रभावित थे, और यदि थे तो किस हद तक। मैंने किताब को वहीं रखा और गूगल पर टाइप किया प्रेमचंद मार्क्स। इससे एक ऐसा टेक्स्ट मेरे सामने आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह प्रेमचंद द्वारा सन 1936 में कानपुर में प्रगतिशील लेखक संघ के उद्घाटन समारोह में अपनी उर्दू मिश्रित हिंदी में दिया गया भाषण था। यह वही साल था जब गोदान प्रकाशित हुई थी। मैंने तय कर लिया कि इसके बारे में साईनाथ को बताऊंगा, और जैसे ही मैंने तय किया तभी मेरा सेल फोन बजा। हेलो गोपाल, मैं साईनाथ बोल रहा हूं। मैं एक पल को जड़वत रह गया। यह भी एक असाधारण इत्तेफाक था। मैं फोन पर बुदबुदाया, साईनाथ 100 साल, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने उन्हें यह पूरा सिलसिला बताया, वे भी थोड़े हंसे। मैं इत्तफाक को लेकर अपने रोमांच पर वापस आता हूं। मैंने ऊपर इस इत्तफाक के जिन 5 चरणों का जिक्र किया है वे 15 मिनट के भीतर ही घटित हुए। 15 मिनट के अंदर अनजाने में देखे कि कैसे ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। दोस्तों, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। क्वांटम फिजिक्स इन्हें जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है ये केवल गोपाल गांधी जी के साथ ही घटित नहीं हुई है, न केवल इनके साथ ही घटित होती है, न केवल मेरे साथ या आपके साथ ही घटित होती है, ये सबके साथ घटित होती है। मुझे ऐसा लगता है कि भले हम इस पर यकीन करें या न करें, या इसके सच को जान पाएं या न जान पाएं, लेकिन ये जो प्रकृति है इसके पास भी एक जबरदस्त विजडम है, इसकी एक बहुत जबरदस्त प्रज्ञा है, और वो अपने प्रज्ञा के तहत इस तरह की चीजें करती रहती है। उसके लिए तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये आश्चर्य में डालने वाली बात है। कुछ जादू हो रहा है, कुछ चमत्कृत हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि कुछ इत्तफाक ही हो रहा है। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।